ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक संख्या 64। इस अध्याय का नाम है सुसंस्कृति मनुष्यों के लिए उपदेश। यता ब्रह्मणि परे साक्षात सर्व कर्म समर्पणम मनः वाक तनुभिः पार्थ क्रिया ऐदुतम ततोच्यते। यद् ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणम् मनोवाक्तं विपार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते। यद् ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणम् मनोवाक्तं विपार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते। यद् ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणम् मनोवाक्तुं विपार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते। माता जी, यता जो ब्रह्मणि परम ब्रह्म में परे दिव्य साक्षात प्रत्यक्ष सर्व समस्त कर्म समर्पणम निवेदन समर्पण मनः मन से वाक वाणी से तनुभि तथा शरीर से पार्थ हे महाराज युधिष्ठिर क्रिया ऐदतम कर्म का एकत्व तत्वोच्यते वह कहलाता है। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हे युधिष्ठिर, जब मनुष्य के मन वाणी तथा शरीर द्वारा किए गए सारे कार्य साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित किए जाते हैं तो उसे कर्मों का एकत्व प्राप्त होता है जिसे क्रियाद्वैत कहा गया है। तात्पर्य ध्यान से सुनेगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को सिखाता है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर देने के स्तर पर पहुंच जाएं। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मत अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी आहुति दो तथा दान में दो तथा जो भी तपस्या करो वह सब मुझे भेंट रूप में समर्पित होनी चाहिए। हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी सोचते तथा जो भी योजना बनाते हैं, यदि वह सब कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति के लिए हो तो यह अद्वैत है। कृष्ण के नाम कीर्तन तथा कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य करने में कोई अंतर नहीं है, दिव्य पद पर वे एक हैं। किंतु इस अद्वैत के विषय में भी अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। हमें अपनी अद्वैतता नहीं गढ़नी चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चरचूर्णतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दो संख्या 62 और 63 का अनुवाद भी ध्यान से सुन लीजिए कि भाव कृपा क्रिया तथा द्रव्य की अद्वैतता पर विचार करने के बाद तथा आत्मा को समस्त कार्य का पृथक मानते हुए मुनि अपनी अनुभूति से जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं को त्याग देता है। जब मनुष्य समझता है कि फल तथा कारण एक हैं, अद्वैत अंततः इस विचार की भांति अवासिकता है कि वस्त्र के धागे वस्त्र भिन्न हैं, तो वह एकत्व की अवधारणा को प्राप्त होता है जिसे भावाद्वैत कहते हैं। धन्यवाद। आज का एक बार फिर ध्यान सुने कि हे दृष्टि, जब मनुष्य के मन वाणी तथा शरीर द्वारा किए गए सारे कार्य साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित किए जाते हैं तो उसे कर्मों का एकत्व प्राप्त होता है जिसे क्रियाद्वैत कहा गया है। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग दो भक्तों के बीच में चल रहा है। नारद जी भी एक महान भक्त हैं और युधिष्ठि महाराज भी एक महान भक्त हैं। एक भक्त दूसरे भक्त को क्या दे रहा है? उपदेश दे रहा है। इसके लिए किन उपदेशों को हम श्रवण करें और अपने जीवन में से क्या करें, उतारें? ये जो भागवत कथा है, भगवान की जितने लीलाएं हुई हैं हर युग में, ये सिर्फ लीलाएं सुनने के नहीं लिए हैं, समझने के लिए हैं कि इन लीलाओं से भगवान प्रैक्टिकली हमें क्या मैसेज देते हैं। अब उस मैसेज को हम समझें और अपने जीवन में क्या करें, उतारें। जैसे भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है भगवान ने दिया है, सिर्फ तोते की तरह श्लोक रटने के लिए नहीं, उसको समझें फिर उसको अपने जीवन में क्या करें, उतारें, तब उसका परिणाम मिलेगा। बहुत से लोग इस संसार में आपको मिलेंगे, ऐसे भी लोग हैं, शायद हमारे प्रभु जी लोगों को मालूम है। एक हमारे प्रभु जी यहां आते हैं, वो पान भी खाते हैं, बहुत पुराने भक्त हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली है। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप सभी जानते हैं। और गीता के सारे श्लोक उनको याद हैं, अब समझ गए होंगे, लेकिन आज तक उन्होंने दीक्षा तक नहीं ली क्योंकि वो पान छोड़ नहीं सकते। जो व्यक्ति पान नहीं छोड़ सकता वो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रभु दुनिया बड़ी विचित्र है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो संस्था है इस्कॉन की, जो स्थापना प्रभुपाद जी किए हैं अपने तापन प्रवचन, कृष्ण भावमृत आंदोलन लोगों को सिखाता है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर देने के स्तर पर पहुंचा जाए। प्रभुपाद जी ने इस संस्था इसलिए खोली कि आप आए और यहां पे कैसे जीवन जिया जाए, भगवान के साथ कैसे अपने आप को जुड़े, तन से, मन से, धन से, वाणी से किस तरह जुड़े, ये शिक्षा करने के लिए प्रभुपाद जी ने संस्था खोली है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम इस्कॉन ज्वाइन करके यहां पे आए, हमको एक पीला कपड़ा पहना दिया गया। मैं और ब्रजहरी प्रभु प्रैक्टिकल बता रहा हूं, एक साथ इस्कॉन ज्वाइन किए थे और ट्रेनिंग भी एक साथ की। राधा राज बिहारी का फूल हम लोग बाल्टी में लेकर के समुद्र फेंकने जाया करते थे, यहां झाड़ू लगाते थे। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, जानते क्यों? हमारा मन विचलित था कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, मैं रेडियो आर्टिस्ट था उस समय, जब इस्कॉन ज्वाइन किया था तो मैं रेडियो में प्रोग्राम दिया करता था, बड़े बड़े नेताओं का भाषण मैं लिखा करता था और कादम्बरी सरता मुक्ता जितनी लेडी मैगजीन है उसका मैं राइटर था, कविताएं गीत गजल कहानियां लिखा करता था। हमको झाड़ू पड़ा दिया गया है ना। और यही प्रभु जी जो राधा कृष्ण टेम्पल कमांडर थे और देवकिन प्रभु शिक्षा गुरु हमारे, वो शिक्षा देते प्रवचन देते थे, तो बड़ा अटपटा लगता था। जब क्लास शुरू हुई, संगत जब शुरू हुई, जब नए भक्तों की ट्रेनिंग शुरू हुई, तब पता चला कि ये सारा जो अहंकार है डिग्रियों का, इसको क्या करना है, फेंकना है। जब हमारे ये दिल में आएगा कि मैं तो जर्नलिस्ट था, रेडियो आर्टिस्ट था, है ना, IITian हूं, डॉक्टर हूं, तो भक्ति क्या करोगे? क्योंकि एक डिग्रियां क्या के उनको फेंकना है, इसकी कोई जरूरत नहीं। भक्ति में सबरी कोई डॉक्टर नहीं पास की थी, विदुर जी और उनकी वाइफ अनपढ़ थी, कौन से स्कूल से डिग्री प्राप्त करती है, लेकिन भगवान उनके जूते बैर खाए, क्योंकि भक्ति के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। हम भक्ति करने के आए हैं, हम समझे इस बात को, तो मन, वाणी और धन कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इससे हमें शिक्षा जाती है। तो प्रभुपाद जी ने यही तात्पर्य कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, यही शिक्षा देने के कि आपके अंदर जो डिग्रियां हैं कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, नॉलेज भौतिक संसार जो ज्ञान प्राप्त किया उसको कैसे ठाकुर जी की सेवा में लगाएं, इसके लिए तुम भौतिक ज्ञान आपका है लेकिन उसको कैसे करो, डाइवर्ट करो भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी ने यही किया। प्रभुपाद जानते जो अच्छा सिंगर है तो वैष्णव भजन गाओ, तुम्हें गिटार बजाना आता है भगवान के बजाओ, है ना, तुम्हें मैनेजमेंट आता है मैनेजमेंट करो, मंदिर चलाने के लिए करो, राइट। जितने यहां पे प्रभु बैठे, सूरदास प्रभु एक फिल्म एडिटर थे, राइट, तुम एडिटिंग करते हो, एडिट कर, भगवान के करो, है ना। हमें जो आदि देव प्रभु मिले थे, आदि केशव प्रभु, हनुमान दास जो उनको भक्त बनाए, कहे कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े राइटर हैं, आपको लिखना है, तुम्हारी इस कांस के साथ जुड़ जाइए, भगवत दर्शन के लिए लिखिए, उन्हें ये बात बोली थी। तो यहां पे आपके हर ज्ञान के लिए द्वार खुले हैं, आप आए तो सही, अपने आप को जोड़े तो सही, इसके लिए प्रभुपाद जी ने संस्था खोले। और आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं, प्रभुपाद जी शिष्य है ना, जो हिप्पी थे, है ना, आज जो हिप्पी होकर क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु ये संस्था बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिस करके देखिए। किसी सिद्धांत से काम नहीं चलेगा, है ना, प्रैक्टिस इट। लेकिन वो प्रैक्टिस हमें कहाँ करिए, इस कान के साथ जुड़ जाए। ये प्रभुपाद जी ने जो है ये शिक्षा दी। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपके अंदर, क्योंकि हर ज्ञान जो कुछ भी कला है भगवान की दी हुई कला है, इस कला को भगवान की सेवा में क्या करना है, लगाना है। नारद जी जो शिक्षा दे रहे हैं ऋषि महाराज को, मन और वाणी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मन ही हमारा मित्र होता है और मन ही हमारा क्या होता है, शत्रु होता है। भगवान से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, भगवान सबसे बड़े बुद्धिमान है। और उनका एक गुण है भगवान का, रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, वाक पटु, जो बात करने में मास्टर होता है उसे वाक पटु। तो भगवान से बड़ा चालाक कौन है जो बात करने में मास्टर है। भगवान बड़े चालाकी से एक बात करते हैं, क्या गीता में, कि मन मना भव मत भक्तो बद्या जी माम नमस्कार। भगवान जानते हैं कि मन ही है जो हमारे से दूर रखता है और मन ही जो हमारे से क्या करता है, जोड़ता है। थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं कि अगर आपका मन नहीं लगेगा तो तन कैसे लगेगा। जैसे आप किसी से प्रेम करते हो पहले मन से करते हो, जैसे गुलाब जामुन खाने की इच्छा होती है तो मन में आता है कि आज मुझे गुलाब जामुन खाना है, फिर तन क्या करता है, किचन में ले जाता है, फिर तन एक्टिव हो जाता है कि गुलाब जामुन मन किया है, मन में गुलाब जामुन आ गई तो अब गुलाब जामुन कैसे बनेगी, पूरा शरीर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो भगवान जानते हैं इस बात को कि मन ही क्या है, प्रमुख है। इसीलिए भगवान कहते हैं हमें तन नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए। कभी विचार किया ऐसा भगवान क्यों करें, कि भगवान जानते हैं कि हर जीव किसका गुलाम है, मन का गुलाम है। तो जो व्यक्ति मन नहीं दे सकता, तन नहीं दे सकता, धन नहीं दे सकता, इसलिए गीता भगवान कहते हैं मन मना भाव, अपना मन मेरे में लगाओ, कि जब तक मन नहीं लगेगा तन से सेवा कैसे करोगे। तो पहले मन मिलता है और फिर तन मिलता है, तो आदमी मंदिर आना शुरू कर देता है और सेवा करना शुरू कर जाता है। और जब तन और मन दोनों मिल जाते हैं तब शब्द बनता है तन्मय, तब इंसान तन्मय होकर के फिर धन भी लगाना शुरू कर देता है। धन लास्ट में, जैसे हमारे जो बड़े लोग हैं, पहले मन से जब भगवान के भक्त लोग उसको प्रचार करते हैं तो उसका मन लगने लगता है, राइट। और जब मन लगता है तो वो शरीर से आने लगता है, तो तन मन जब दोनों सेट हो गया तो धन भी देना शुरू कर देता है। तो भगवान की भक्ति सेवा तन से होती है, मन से होती है और धन से होती है। संसार इस बात को जानता है कि भगवान सेवा किससे होती है, तन से, मन से और धन से। लेकिन भगवान तन की बात भी नहीं करते, धन की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं, मन, कि मन ही हमारा क्या है, मित्र है। तो जब मन लग जाएगा तो बाकी तीनों चीजें, दोनों चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, लग जाएंगी। ये भगवान का कहने का मतलब है कि मन बना भो मत भक्ति, मेरी भक्ति करो, अरे मुझे प्रणाम करो। क्योंकि प्रणाम कैसे करना चाहिए, लोगों को आता ही नहीं है। जैसे हम लोगों को तो शिक्षा दी गई, सिखाया गया कैसे प्रणाम करना चाहिए। आप खुद सोचे जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, इस कान ज्वाइन करने से पहले आपको प्रणाम करने की विधि मालूम थी, नहीं मालूम थी। शंकर जी के हम भक्ति करते थे, हनुमान जी के मैं खुद भक्ति करता था, लेकिन कृष्ण भगवान है जानता ही नहीं था। सोचने की बात, कैसे प्रणाम करना चाहिए, कभी किसी ने शिक्षा ही नहीं दी। लेकिन जैसे ही इस कान में आप आते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, कि सबसे पहले क्या ट्रेनिंग दी जाती है, देखो प्रभुपाद जी ने अपने संस्था में भक्ति योग को कैसे प्रस्तावित किया। सुबह 3:30 बजे आप उठते हैं, किसके लिए उठते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए। हमारे मन में क्या सेट है कि हमको सुबह उठना है भगवान के दर्शन करने के। भक्ति योग हमारी शुरू हो जाती है सुबह 3:30 बजे से। आप सुने, क्योंकि आप तैयार हो रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने आप को, किसके लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, तो माइंडसेट है आपका किसके लिए, भगवान ही चाहते हैं दर्शन करें। लेकिन भगवान भी आपसे पहले उठ जाते हैं, जो हमारे पुजारी हैं वो हमसे पहले उठते हैं, वो भगवान को पहले वो उठेंगे, पुजारी उठेगा फिर भगवान को उठाएगा, राइट, फिर भगवान को रबड़ी खीर मलाई के क्या करेगा, भोग लगाएगा, और फिर भगवान क्या है खा पी करके दर्शन देने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो अंदर से भगवान भी तैयार हो रहे हैं दर्शन देने के लिए, और हम भी तैयार हो रहे हैं दर्शन पाने के लिए, लेने के लिए। क्या सिस्टम प्रभुपाद जी बनाया, इसके पहले याद करे हमारा कोई सिस्टम था, हम भी उसी तरह से आजकल के 99% जो लगे हुए हैं उड़ते हैं, उनको क्या चाहिए, बेड टी चाहिए, बिस्तर वाली चाय चाहिए। लोगों की दिनचर्या क्या है, यही दिनचर्या हमारी भी थी, याद करिए, यही दिनचर्या, अखबार पढ़ेंगे सुबह सुबह फिर कुत्ता टहलाने लेके निकल देंगे, भगवान के बारे में कोई नहीं सोचता सुबह सुबह, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनका मन भगवान में लगता ही नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने संस्था खोला कि आप आए और ट्रेनिंग लीजिए कि भगवान से कैसे जुड़ा जाता है, क्योंकि आनंद के आधार एकमात्र कृष्ण है, जो आनंद के खजाना है, आनंद के आगार है, जब तक आप उनसे जुड़ेंगे नहीं तो आनंद कैसे मिलेगा। तो आनंद लेने के लिए आनंद देने वाले से क्या होता है, जुड़ना होता है। कैसे जुड़ा जाए, प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल एक टाइम टेबल बनाया कि सब भक्त सुबह उठ करके सबको मंगल आरती आना चाहिए, इसलिए कंपल्सरी कर दिया है कि कभी कभी जीव है आलस कर जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, चाहे हमारे प्रभु जी लोगों को याद होगा, हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम रहते थे वहां पे, तो कभी कभी मैं भी थका रहता था, है ना, तो श्रीधर महाराज मंगल आरती के पहले स्वयं जाते थे और उठाते थे, पानी डाला जाता था, है ना, जलोप्रिय हुआ करते थे, क्योंकि जब मैं नए नए था तो मुझे स्वयं बुखार हो गया कि आदत ही नहीं थी सुबह उठने की, है ना, सुबह उठने की आदत नहीं थी, लेकिन आदत डलाई गई किसके लिए, हमारे कल्याण के लिए, है ना। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेंटर, प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा जो सेंटर है आलसियों का अड्डा नहीं है, दिस प्लेस नॉट फॉर लेजी एंड, ये प्रभुपाद जी शब्द है, ये आलसियों का अड्डा नहीं है, अब पागलों का अड्डा भी नहीं है, है ना, ये किसके लिए है, भक्त बनाने का अड्डा है, जगह है। आप आइए, कैसे एक इंसान को भगवान से जुड़ना है, शिक्षा देने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है यही सिखाता है कि कैसे तन से मन से धन से और अपने जितने भी कार्यकलाप हैं वो सब कैसे भगवान की सेवा में जुड़ा जाए। इसके लिए प्रभुपाद जी ने संस्था खोली है कि जितनी क्वालिटी सब भक्तों के अंदर है, इस क्वालिटी किसका दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। हमें यही समझना है, आज जो भी हमारे अंदर गुण है कोई भी, क्योंकि देखिए भगवान इतने कृपालु हैं कि जितने भी जीव हैं सबको कुछ न कुछ कला दिया हुआ है। इंसान को इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ हमारे अंदर सारी क्वालिटी है, पशु पक्षी भगवान ने उनको भी क्या दिया है, गुण दिया हुआ है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे, किसका, मधुमक्खी का, एक मक्खी होती है और एक क्या होती है, मधुमक्खी है, दोनों मक्खी है ना, लेकिन एक शहद बनाती है और एक शहद नहीं बना पाती, क्योंकि भगवान उसको क्वालिटी नहीं दिया है, और जिसको क्वालिटी दे दिया है वो क्या करे, देख कितनी बड़ा गुण है। जैसे यहाँ पे भगवान का हार बन रहा है, ये फूल है, हम फूल को मनुष्य होकर के हम सिर्फ फूल को सूंघ सकते हैं, राइट, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन इसका पराग नहीं निकाल सकते, वो क्वालिटी भगवान हमको नहीं दिया है। आप फूल सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पराग भरा हुआ है उसको आप निकाल, लेकिन मधुमक्खी एक ऐसी प्राणी है भगवान ने बनाया है कि उसको पराग निकालने की कला भगवान ने दे दी है। देखिए ये भगवान की महानता, देखिए कि एक मधुमक्खी को भी पराग कैसे निकाला जाए और उसका शहद कैसे बना जाए, इन नॉलेज उसको दे दिया है। अब मधुमक्खी जाकर के फूलों पर मंडराती है, अब पराग निकाल करके डायरेक्ट अपने छत्ते पर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। कहां छत्ता कहां फूल, लेकिन वो भूलती नहीं है। एक क्वालिटी किसने दिया है, ये भगवान ने दिया है, तो उसके अंदर गुण है। हम इंसान होकर के हम खुद कहते हैं कि ये शहद असली है क्योंकि मधुमक्खी ने बनाया है, और जो इंसान का बनाया मधु है वो नकली है, वो चीनी का बनाया हुआ है। हम खुद कहते इस बात को, तो एक क्वालिटी भगवान सबको दिए हैं। एक ऐसा पक्षी होता है जो गांव में लोग गए होंगे प्रचार करने, यहां कभी देखा हो, जो अपना घोंसला खुद बनाती है, कितना आंधी पानी आए वो झूलेगा लेकिन वाटरप्रूफ पानी अंदर ले जाएगा। उसके जो चुन्नू मुन्नू बच्चे होते हैं पानी से भीगेंगे नहीं, कितना बड़ा तूफान आए कोई असर नहीं पड़ता, झूलेगा जरूर लेकिन गिरेगा नहीं। इतना पक्का मकान बनाते पक्षी। एक क्वालिटी किसने दी है, कृष्ण ने दी है, भगवान ने दी है। तो इंसान को सोचने से सारी क्वालिटी मार, ऐसे भी नहीं। एक और होता है जीव, जानते उसका नाम क्या है, मच्छर। मच्छर तो ऐसा मच्छर है कि उसको सब जानते हैं। अब देखो मच्छर की क्वालिटी देखिए, भगवान ने एक मच्छर को एक क्वालिटी गुण दिया हुआ है। उसका गुण जानते क्या है कि आपके किसी बॉडी के पार्ट में आपके कान में गुनगुनाएगा, ऐसे नहीं चोर चर बैठेगा, पहले गुनगुनाएगा कि मैं आ गया हूं और उसके बाद वो बैठेगा, है ना। और उसका मुंह ऐसा भगवान ने बनाया इंजेक्शन की तरह कि आपके बॉडी पर बैठेगा और फिर इंजेक्ट करेगा। आपका ब्लड कैसे चूसना खींचना चाहिए उसको एक कला भगवान उसको दी है। सिर्फ खून इंजेक्ट माने शक करना ही उसकी क्या है, कला है। भगवान के गुरु मच्छर को दिया हुआ है कि यही उसकी रोजी रोटी है, हमारा खून ही उसका क्या है, भोजन है आहार, उसको तो लेना ही लेना है। अब देखिए कि इंसान इतना बलवान इतना इंटेलिजेंट हो करके बड़े बड़े पहलवान तक मच्छरों से परेशान रहते हैं, चाहे दारा सिंह जैसे पहलवान हो, बड़े बड़े पहलवान, यहां तक आर्मी के लोग भी मच्छरदानी लगा के सोते हैं। एक क्वालिटी भगवान ने मच्छर को दे दी कि ब्लड खून चूसने के लिए। अब उस खून से कितने इंसानों की रोजी रोटी चलती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी ऑल आउट बनाने की, कछुआ छाप अगरबत्ती बनाने की, राइट, मशको नेट बनाने की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही है, उन फैक्ट्रियों से इंसानों की रोजी रोटी चल रही है। क्योंकि भगवान ने एक क्वालिटी दे दिया मच्छर को खून चूसने की, और उससे बचने के लिए इंसानों की रोजी रोटियां चल रही है। इंसान ये अहंकार करता है कि मुझसे ज्यादा कोई है ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान सबको क्वालिटी देते हैं। अब आज आप आ जाइए पौधों पर, देखिए आप लोगों ने एक लीला सुनी होगी भगवान की, जानते क्या लीला थी। एक बार भगवान छोटे से जब बालक के रूप में थे, चलना सीखा ही था, है नहीं, कि बच्चे पहले जन्म लेते हैं तो कोई बड़े हो जाते हैं तो घुटने के बल चलते हैं, फिर खड़ा होना सीखते हैं, जो खड़ा होना सीख लिया फिर थोड़ा थोड़ा चलना भी शुरू कर देते हैं, तब और जब थोड़ा सा चलना सीखा फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो भगवान जब दौड़ना सीखे थे उसी समय क्या रह गए, वो खेल रहे थे, बलराम भी साथ थे और ग्वाल बाल सब साथ थे। हुआ क्या, खेल खेल में भगवान ने मिट्टी खा ली, क्या खा ली, मिट्टी खा ली। अब बलराम जी दौड़ करके आए कि मैया रे मैया कान्हा ने मिट्टी खाया है, भगवान के पीछे दौड़ के आ गए, मैं नहीं खाया। तो मैया ने कहा कि मुंह खोल कर दिखाओ, और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला कन्हैया ने क्या दिखाया, ब्रह्मांड दिखाया। ये लीला भगवान ने बहुत सोच सुना के की, क्योंकि भगवान को मालूम था कि जब कलयुग आएगा तो बड़े बड़े संत महात्मा लोग अपने आप को क्या बताएंगे कि मैं स्वयं कृष्ण हूं या कृष्ण का अवतार हूं। मोर पंख लगा करके बांसुरी बजा करके और जो है कुकर्म करना शुरू कर देंगे फर्जी साधु लोग, है ना। हमें ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए, साधारण ना चाहिए, जो कहता है कि मैं तो स्वयं कृष्ण हूं, भगवान हूं, भगवान का अवतार हूं, राइट। तो मोर पंख लगाने से कोई भगवान नहीं बन जाता, मटका सिल्क और टोपी लगाने से कोई नेता नहीं बनता। ऐसे लोग से हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा कहता है तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है हम आपको भगवान तब मानेंगे क्योंकि हमारे भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी खाई थी, इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखा दिया था, लेकिन मैं आपको कंसेशन देता हूँ, आप बैठ जाए भगवान जी। जब बैठ जाए तो कहेंगे भगवान ने तो थोड़ी सी मिट्टी खाई थी, हम आपको क्या करेंगे एक मुट्ठी भर मिट्टी डालेंगे, है नहीं, ताकि आप बड़ा ब्रह्मांड दिखा दीजिए, है ना, और उनके मुंह में मिट्टी डाल दीजिए, कहे ब्रह्मांड दिखाओ, वो फर्जी भगवान दिखा पाएगा, कभी नहीं दिखा पाएगा, तो कम रिजेक्ट करेंगे, भाई तुम भगवान नहीं हो, हमारे भगवान तुम मिट्टी। ऐसे ऐसी घटना पे जब एक कारगिल का युद्ध हुआ था, सत्य घटना बता रहा हूँ, राधा राज व्यासन, एक कारगिल का जब युद्ध खत्म हुआ था, एक बहुत बड़े आर्मी के ऑफिसर थे, वो बच गए थे, है ना, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमारे घर आइए कि हम सुरक्षित युद्ध से बच गए हैं, आप आइए। मैं उनके घर गया तो जानते हो किसको भगवान मानते थे, वो जो बड़े बाल वाले हैं, जानते हैं बड़े बाल वाले, उनकी बड़ी मूर्ति लगाए थे, तो हम गए तो कहे ये हमारे भगवान हैं, उन्होंने मुझे बचा दिया है ना, ऐसा तो हम जानते थे ही। तो हम कहा आपके जो भगवान हैं कहाँ रहते हैं, क्योंकि तब वो जीवित थे, कि स्वामी जी वो तो बंगलोर में रहते हैं। हम कहा बंगलोर रहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि कभी वो दिल्ली आते हैं, कहे स्वामी जी बिल्कुल दिल्ली आएंगे, क्यों नहीं दिल्ली आएंगे, ये देश की राजधानी, या तो हर आता है तुम्हारे साथ। तो हमने उनसे पूछा वो कैसे आते हैं, कहीं हवाई जहाज से आते हैं। हम कहा जब भगवान है तो हवाई जहाज से आने की क्या जरूरत है, प्रकट हो जाना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि हमारे भगवान तो प्रकट हो जाते हैं। जब प्रहलाद महाराज ने कहा इस खम्भे में भी है, तो भगवान खम्भे से ही प्रकट हो गए, इसका उनके पास उत्तर ही नहीं था। कहे कि प्रभु जी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। हम कहा सोचते ही सोचते ही कैसे, क्योंकि सही ज्ञान देने वाला आपको कभी मिला ही नहीं, आप तो फर्जी के लोगों के बीच में क्या है फंसे हुए हैं। ये ज्ञान है, प्रभुपाद जी ने ही शिक्षा दी कि जो कृष्ण है उनको पहचानो। आप खुद सोचिए कि शंकर जी और ब्रह्मा जी जब देखो तब वरदान दे देते हैं, और डांट भी पड़ी है, भगवान ने इनको दो तीन बार डांटा है दोनों को, कि आप लोग बिना सोचे समझे वरदान दे देते हो, जब आपको मुसीबत गले लग जाती है तो मुझे आना पड़ता है बचाने के लिए। तभी बाद में समझ आता है कि भगवान और देवता में क्या है अंतर है। ये शिक्षा में कहां से मिली, इस काम ज्वाइन करने से मिली, पहले नहीं मालूम था, क्योंकि डंके की चोट पर प्रभुपाद जी का कृष्ण ही भगवान है और भगवान ही कृष्ण है। जब इस काम का नामकरण कर रहे थे तो सब शिष्यों के साथ प्रभुपाद जी बैठे थे, तो लोगों ने क्या नाम चुना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तो गॉड का नाम भी जानता हूं, दैट इज कृष्णा, इंटरनेशनल सर्टिफाइड कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण, देखिये भगवत गीता में देखिये वेद व्यास जी है ना, गणेश जी मिलकर के महाभारत की रचना कर रहे थे, है ना, तो लोग को समझ नहीं आता, हमारे ग्रंथों के बारे में भी लोग कभी कंफ्यूज होते हैं, उनको सुन नहीं आता। क्या हुआ कि एक बार एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, नाम नहीं लूंगा, वो हमको मिल गए, जानते कहां पे, एक जीटी करनाल में एक बहुत बड़ा होटल है फाइव स्टार वहां पे, तो पहली बार वहां गए थे, क्या होता है कुरुक्षेत्र, मेरे समझ नहीं आता, शास्त्र में महाभारत ने कहा है इतनी अच्छी सेना थी है ना, जगत इतनी छोटी है, सब कहां आए होंगे, उसका प्रतिवादी था कहां आए होंगे, एक कैसे सोच है। हम कहा देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, लिखने वाले गणेश जी हैं। अब जब गणेश जी ने लिख दिया है एक प्रामाणिक, तो हम उन्हीं की बात मानेंगे, हम अपनी दिमाग क्यों लगाए। वो वही रुक गए कि बात सही है, क्योंकि हम जानते थे कि महाशय भी क्या है, ये भी किसके भक्त हैं, गणेश जी के। जब गणेश जी का नाम रख दिया तो चुप हो गए कि बात सही है। जब गणेश जी ने लिख दिया कि इतने लोग आए थे, है ना, तो हमको स्वीकार करना चाहिए। तो एक प्रामाणिक गुरु जो हमको संदेश देता है, हमें अक्षर से उसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हमें किंतु परंतु नहीं कर सकते, तो ऐसी घटना। इसीलिए हम जो कि प्रचारक हैं इस आंदोलन के, तो हमें बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, बहुत एक्सपर्ट होना प्रचार करना। जो हमारा दिल्ली का मंदिर बन रहा था, तो इंडिया टुडे के जो सब लीडर थे, हमारे मित्र थे, वो एक इंटरव्यू लेने के लिए आए, क्या कि इस काम देख सुने कि इस काम को दिल्ली में इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि दिल्ली में तो पहले से बड़े बड़े मंदिर हैं। तो उन्हें दो तीन मंदिरों का नाम बनाए, बिरला मंदिर, गौरीशंकर मंदिर, ए मंदिर, ओ मंदिर, है ना। तो कहे कि इस काम को इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। फिर लास्ट में उन्होंने जो बात बोली उसी बात को मैंने पकड़ लिया। लास्ट में बोलते हैं, कहे कि स्वामी जी जब भगवान हर जगह है, जैसा कि आप लोग बताते हो, जब भगवान हर जगह है तो मंदिर बनाने की जरूरत है ही क्या। ये बड़ी बात कह दी उन्होंने कि जब भगवान हर जगह है तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई मंदिर बनाने की। तो चूंकि मैं भी पत्रकार, हम नस जानता है उनका, पत्रकार कैसे जवाब दिया जाता है। मैंने उनसे बोला, हमको देखिए, एयर इज एवरीवेयर, हवा हर जगह होती है, फिर हम पंखे की तलाश क्यों करते हैं, पंखे के पास क्यों जाते हैं। वो समझ गए कि बात तो सही है, है ना, हवा तो हर जगह होती है, लेकिन फिर भी हमें किसी जरूरत पड़ती है पंखे की, जहां जाकर के हमें क्या मिलता है, सुकून मिलता है। इसलिए भगवान तो हर जगह है, लेकिन जब मूर्ति की स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा जब की जाती है, तो भगवान को मंत्रों द्वारा आवाहन किया जाता है कि हे ठाकुर जी, आपकी मूर्ति बन करके आ गई है, अब आप इसमें क्या है, आइए विराजिए, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे खारगढ़ में हमारी मूर्ति बनकर तैयार है, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, जितने पंडित सब विधि विधान से क्यों है कि हम भगवान को आवाहन करते हैं, वही भगवान जब गोलोक में विराजमान रहते हैं, जब अर्चा विग्रह, फिर क्या हो जाता है, अर्चा विग्रह हो जाता है, तब हम जो प्रणाम करते हैं, जो भोग लगाते हैं, ये ठीक उनको क्या करते, भगवान अर्चा विग्रह के माध्यम से स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया, जैसे डाकिया जब पोस्ट ऑफिस में जो वो होते ना, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट बॉक्स, राइट, गली गली पोस्ट बॉक्स रहते हैं, उसमें जब लेटर डाल देते हैं तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। क्यों कि हर पोस्ट बॉक्स हेड पोस्ट ऑफिस से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। कि जो अर्चा विग्रह है, ये भगवान से क्या है, कनेक्टेड है बिल्कुल। तो जब हम यहां प्रणाम करते हैं तो अर्चा विग्रह के माध्यम से डायरेक्ट भगवान क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो अर्चा विग्रह जरूरी है, है ना। तो यही है एक ट्रेनिंग कौन किया प्रभुपा, इसीलिए प्रभुपा जी अपने तात्पर्य कितने सुंदर ढंग से देखो इसको समझाया है कि यत करोषि, श्लोक प्रभुपा जी बोले कि यत करोषि रसनासी, है ना, यत जुहोषि ददासि यत, है ना, कि जो कुछ भी है वो किसको अर्पण करो। अब आप खुद सोचिए कि हम कितने अनभिज्ञ हैं, अज्ञानता कितनी अधिक है। जैसे आप घरों में जाइए, राइट, कभी कभी जो हमारे प्रचारक हैं, भक्त जाते हैं, तो किसी के घर में जाए तो लोग पहले क्या पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, नहीं पानी पिलाते हैं। फिर आपको फ्रूट लाएंगे, वो फ्रिज खोलेंगे, अब फ्रूट खिलाएंगे। हमारा भक्त क्या करता है, आपने भोग लगाया, अब उनको भोग लगाने की आदत ही नहीं। हमारा भक्त क्या करता है, कह या तो भोग लगाओ, नहीं बोलेगा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, तीन बार भगवान को याद करके अब मत्थे से लगा करके पानी पी लेता है और स्वीकार कर लेता है, मन से भगवान को भोग लगाता है। ये विधि है, लेकिन लोग इतने ज्ञानता है, क्योंकि हम ज्ञान में, तो हमें घर घर जा करके प्रचार करना चाहिए कि भगवान का भोग लगाए बिना जो खाता है पाप खाता है। इस संदेश देना है। लोग क्या करते हैं, अज्ञानता बस फल फूल फ्रिज में भरा रहेगा उनके, है ना, लड्डू गोपाल को ला करके अपने घर में बैठा देते हैं। सिर्फ लड्डू गोपाल को घर में बैठाने से कुछ नहीं होता अगर आप उनको भोग नहीं लगाते। लेकिन लोगों का ज्ञानता है कि फ्रिज भरे रहेंगे फल फूल से, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आएगा कि एक केला एक एप्पल उनके पास भी रखें। ऐसा नहीं करेंगे। जब कोई रिश्तेदार आ गया, दामाद आ गया, कोई आ गया, तो फ्रिज खोलेंगे, फटाफट निकालेंगे, खिला देंगे, भगवान इसे देखते रह जाते हैं। सोचने वाली बात, भगवान क्या सोचेंगे कि आदमी कितना फर्जी आदमी है, हमको वृंदावन से ला करके अपने घर बैठा दिया, एक गिलास पानी भी नहीं देता है, नहीं केला भी नहीं खिलाता, कुछ नहीं खिलाता, गरम गरम पराठा बना खा जाएगा, हमको मिश्री इलायची रख दिया चबाने के लिए। लोग इतने आसे हैं कि मिश्री इलायची रख देते हैं, क्या भाई चबाते रहिए, पराठा तो हम खाएंगे गरम गरम सफेद मक्खन लगा करके। और फिर वही व्यक्ति जब दो पैसे की अगरबत्ती लेगा अलग अला शुरू कर देगा, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिले तन का, क्या तेरा तुझको पर क्या लागे मेरा। सोचने वाली बात, भगवान से झूठ। इसीलिए घर में भगवान को रख करके भी आपकी अज्ञानता इतनी है कि जो आनंद के आगार हैं उन्होंने अपने घर में बैठा रखा है, लेकिन उनकी कृपा आपको मिल नहीं पा रही है क्योंकि आप अपराध कर रहे हैं। या तो भगवान को लाओ नहीं घर में, अगर ला दिया है तो उनका पूजा करनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि भगवान को कैसे पूजा की जाती है, कैसे उनको आरती की जाती है, भगवान चाहते क्या है। आप खुद सोचिए, हम आपको ले जाएं अपने घर में बैठा दें, है ना, और उसके बाद हम आपके पास बैठे भी नहीं, है ना, पानी भी नहीं पिलाएं खिलाएं, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। जब आपको अच्छा नहीं लगता एक इंसान होकर के, तो भगवान जो आनंद के आगार है उनको कैसे अच्छा लगेगा। इसीलिए घर में भगवान को रखते हुए भी हर इंसान क्यों है परेशान है। क्यों परेशान है, इसीलिए अज्ञानता के चलते। तो ये अज्ञानता दूर करने किसकी जिम्मेदारी है, भक्तों की। ये चेतन महाप्रभु का मिशन इसलिए है कि आप घर घर जाकर के उनको यही शिक्षा दीजिए कि कृष्ण ही भगवान है, भगवान ही कृष्ण है, और उनकी सेवा कैसे किया जाना चाहिए, ये सब शिक्षा देना ये हमारा कर्तव्य। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो इस कान खोला है, तो उनको जो लोग जुड़ जाते हैं हमसे दीक्षा लेकर के, फिर वो भी अपने घर में ऐसा शुरू कर देते हैं। इसलिए जो वैष्णव हैं, जो दीक्षित भक्त हैं, उनके घर जाइए, तब पता चलता है कि देखो गौर निताई को रखते हैं, और पूरा विद्वत घर में भी करते हैं, मंदिर में आकर सेवा करते हैं। तब प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा दी, उसके लिए प्रभुपाद जी ने इसका स्थापना की। मन वाणी से कैसे जुड़ा जाए, एक ट्रेनिंग प्रभुपाद जी ने हमको दिया। खाते हम वही हैं जो बाहर दुनिया खाती है। आप जानते हैं जो सब्जी मंदिर आती है वही सब्जी फाइव स्टार होटल में जाती है, क्योंकि सब्जी मंडी एक ही होती है। ऐसा नहीं इस काम से सब्जी मंडी अलग होती है, सब्जियां सब वहीं से आती हैं, फल फूल वहीं आते हैं, लेकिन अंतर होता है कि उनको ला करके धो करके सफाई करके हम भगवान को भोग लगाते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो भगवान का भोग नहीं लगाते हैं, वो पाप खाते हैं, हम पाप नहीं खाते हैं। ये अंतर है, चीजें वही होती हैं। इसीलिए भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, जिस संसार में सब रह रहे हैं, लेकिन उसी संसार में हम भी रह रहे हैं, लेकिन हम अम्ब्रेला लगा लिया किसका, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस कांक जो अम्ब्रेला है वो हमारी सुरक्षा क्या कर रहा है, कर रहा है कि हम संसार में रह करके भी संसार क्या है, अलग है। ये प्रभुपाद जी इस कांक से बनाए, ये संस्था इसके लिए, इस चीज को आप खुद रियलाइज कर रहे होंगे जो जुड़ गए हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ी है। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि सबको किसी ने प्रचार का काम क्या है कि घर घर जाओ प्रचार करके मंदिर लाने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो मंदिर नहीं आएगा उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी, है ना। तो बड़े लोगों को जो है मंदिर लाने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जब राधा राज बिहारी सामने को खड़ा कर देंगे तो बाकी काम कौन करेगा, राधा राज बिहारी करेगा, ये उनका काम है। प्रभुपाद जी क्यों चाहते थे कि हमारी गीता घर घर पहुंचनी चाहिए? इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि तुम तो प्रचार करी रहे, लेकिन जब भगवत गीता उसके हाथ में जाएगी और पढ़ेगा तो उसको मैं समझाऊंगा कि वो तात्पर्य के रूप में तो मैं ही हूं। जब वो तात्पर्य पढ़ेगा तो मैं ही तो समझाऊंगा उसको, तो मेरी गीता जब दोगे वो पढ़ेगा तभी तो मैं समझाऊंगा। यू रीड इट। तो प्रभुपाद जी टेक्निकली बहुत इस चीज किया है। तो प्रभुपाद जी ने इस संस्था वास्तव में इसीलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो सोचते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, किसके लिए? कृष्ण के लिए। हमारे जो मैनेजमेंट में ड्यूटी है वो यही सोचते रहते हैं कैसे भगवान का जो है इसको विस्तार किया जाए। चेतन महाप्रभु तो अपना दिमाग जो भगवान का दिया हुआ है किसके लगा रहे हैं? भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो जिसके अंदर जो क्वालिटी है ना, प्रभुपाद जी ने सबके लिए यहाँ पर जगह दिया हुआ है ना। अब आप उस यूटिलिटी क्या करिए, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ किसका है? भगवान का। प्रभुपाद जी कहते थे कि कैसे हम वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाएं। कभी कभी हमारे भक्त जब क्योंकि एक हमारे साथ जानते क्या एक घटना घटी थी सुनने, जब हमको लाइव यूनिवर्सिटी का प्रचारक बना दिया गया राइट, तो महाराज जी कनाडा से आए थे, तो आपको याद होगा एक मुझे स्टील का ब्रीफ केस दिए थे सब सुनाइट है ना, तो हम बड़े खुश हुए थे कि स्टील का ब्रीफ केस लेकर के। तो सूरदास प्रभु को मालूम है एक उस जमाने की एक हीरोइन थी बिंदु करके है ना, सब घटना मैं बता रहा हूँ है ना। तो बिंदु के जो हस्बैंड है चंपालाल जिहेरी, जो हॉर्स रेस के नंबर एक माने जाते थे उस जमाने में, जो घोड़दौड़ नहीं होता उसके ट्रेनिंग, तो ये ऐसी मार्केट में उनका ऑफिस था। तो मैं किसी के थ्रू उनका नंबर मिला था, मेंबर बनाने के गए। तो मैं जब लिफ्ट से जा रहा था तो लिफ्ट पर काफी लोग थे, तो कुछ लोगों ने टांट कसा जानते हैं कि देखो ये सब हरे कृष्णा वाले हैं, मॉडर्न भक्त हैं, स्टील का इतना महंगा ब्रिफ किस लेके चल रहे हैं, ऐसा बोलते हुए बोला। हेलो, तो मैं भी एक जर्नलिस्ट में बोलने में मास्टर था है ना। हमका सर, मैंने बोला उनके, हमका बात ऐसी है कि हम उन फर्जी साधुओं में से नहीं है जो कमंडल लेकर के धूल हाथ में धूल झोंकेंगे और दिखा देंगे। अगर आप इसको खोलेंगे तो भगवान की चीज मिलेगी। हमने खोल करके प्रसाद निकाला और जितने लोग खड़े थे सबको प्रसाद दे दिया एक एक गोली, और लोग बड़े खुश हो गए। हमका सर यही अंतर है। हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे है ना कि जो वैज्ञानिक है अपना काम करे, टेक्नोलॉजी से बनाए चीजें, और हम बुद्धिमान आदमी हैं उसको यूटिलाइज करें भगवान की सेवा में। इस काम इस तरह से प्रभुपाद ने कहा। अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की एक फोटो हम अभी किसी ने हमको भेजा था, उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी थी है ना, और उस गाड़ी से बैठकर बहुत बड़ी गाड़ी थी है ना, उसकी फोटो हमारे पास है, और महाराजा जैसे लगते थे बैठ करके। और जब पहली बार वृंदावन गए तो सारे साधु कहते हो ये कैसा सन्यासी है, कैसा साधु है, इतनी बड़ी गाड़ी चलता है, क्यों ना चले? अरे प्रिया, हम उनके भक्त हैं जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। जानते हैं एक करोड़पति का जो ड्राइवर है उसका भी जशप होता है, जश होता है, उसको भी लोग मेंटेन करते हैं, उसके बच्चे कितने ढंग से रहते चाहते। हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम सोचते हैं फटीचर बन करके घूमे, है ना, प्रैक्टिकल हो नहीं सकता ऐसे। प्रभुपाद चाहते थे कि हमें जब ट्रेन से जाएं तो टिकट लेकर के जाएं, उन साधन पर नहीं जाएं जिसे टीटी देखा तो बाथरूम में घुस जाएं, है ना, गिड़गिड़ाने लगे कि मैं तो साधु जी हूं, है ना, हमको माफ कर, नहीं, हम जाएंगे टिकट लेके जाएंगे। प्रभुपाद बोलते थे जिस क्लास से जाओगे उस क्लास के लोग मिलेंगे। हमारा उद्देश्य प्रचार करना, प्रचार, वी नीड क्रीम नॉट क्राउड। पर बोलते हमें दो एक चांद और सूर्य मिल जाए चलेगा, थाउजेंड स्टार्स मुझे नहीं चाहिए। प्रभुपाद हमेशा क्वालिटी पर विश्वास करते थे। प्रभुपाद बोलते थे कि कक्षा में नहीं सोचने से भीड़ हो तभी हम क्लास देंगे, क्लास होनी चाहिए, सुनना चाहिए, हमको भीड़ नहीं देखना है। एक व्यक्ति की ओर अगर आपने भक्त बना दिया तो कितने लोग को जोड़ देगा। फर्स्ट क्वालिटी, इसे आप देखेंगे कि जो मंदिर है, जानते हैं इसमें इस्कॉन इतना वर्ल्ड में फेमस हो गया है, बड़े लोगों के बीच में, सबके बीच में है ना, सबके बीच में इस्कॉन, इसमें आप लोग इस्कॉन इतना कहीं भी नाम लीजिए, क्योंकि हम तो प्रचार ही करते हैं ऐसे लोगों के बीच में, कहीं भी नाम लीजिए सब प्रभावित हैं। जानते कैसे प्रभावित हैं कि यही एक ऐसा मंदिर है जहां लोग कीर्तन करते हैं, बड़ा आनंद आता है। लोग ही बोलते हैं कि शाम को जब जाते हैं कि जो आपके वृंदावन जाता हूं जो जाते तो लोग कितना कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, और अंग्रेज के बच्चे भी नाचते हैं, है ना? क्योंकि दुनिया में आप किसी भी मंदिर चले कहीं में कीर्तन नहीं होता, क्लासेस नहीं होती। आप दिल्ली आइए, बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन जब आरती सुनने वहां पर जाइए तो आजकल जानते क्या बना दिए हैं, बटन दबाइए तो अपने आप से बजने लगता है, कोई कीर्तन करने वाला नहीं है। सोचने वाली बात है, मंदिर की शोभा होती है भक्तों से और भगवान से। इसलिए इस्कॉन का मंदिर बनना बहुत आवश्यक है, यहाँ पे भक्ति जाती है, जो हम पब्लिक से जोड़ते हैं और जोड़ने का प्रयास करते हैं। बाकी किसी मंदिर में नहीं होता है, जान लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, पंडित लोग बैठे रहेंगे, आपने कुछ दक्षिणा दे दिया तब चरणा में देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसा भी होता है, कई मंदिर में तो ऐसा होता है, प्रभु जी भगवान तरस जाते हैं फूलों की माला के लिए, जब जन्माष्टमी आए तभी उनका श्रृंगार चेंज होगा। अब ये पनर नहीं जानते क्या करते हैं लोग, आलसी लोग, वो जानते क्या करेंगे, जो होता है चंदन की माला, चंदन की माला गले में पहना देंगे, और जो जैसे क्या होते शीशा करके अल्लाह कर देंगे, लोग आएंगे बस दूर से दर्शन करेंगे, अब भगवान घुटन महसूस करते रहे हवा के लिए, तरसते रहे। सोचने वाली बात, ऐसे ऐसे मंदिर देखा है, क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मानते और मूर्ति समझते हैं, यही अंतर है प्रभुपाद जी। इसीलिए इस्कॉन के मंदिर में और दूसरे मंदिर में जमीन आसमान का क्या है, अंतर है। स्वच्छता अभियान हमारा प्रथम है, हर चीज लोग भाई स्वच्छता से सुंदरता से बड़ा प्रभावित होते हैं, भगवान का रोड डेस्ट होता है। अब भगवान जितने प्रसन्न रहेंगे उतने हम भी क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता में हमारी क्या है, प्रसन्नता है। तो मन से वाणी से को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, ये शिक्षा हमारे इस कान में दी जाती है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली जीवात्माएं हैं जो कि प्रभुपाद जी से की संस्था जुड़े, और प्रभुपाद जी में इस कान में कोई अंतर नहीं है, जैसे कृष्ण में उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, तो प्रभुपाद जी इस कान में कोई अंतर नहीं है, प्रभुपाद के इस कान में हमारी बॉडी है। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि भी गौर पूर्णिमा आ रही है, चेतन महाप्रभु का क्या आदेश है कि भारत भूमि पे जन्म जन्म सार्थक कर परोपकार, कि हम तो आनंद उठा रहे हैं लेकिन दूसरों को भी ये आनंद में शामिल करें, अर्थात मंदिर को भक्तों से भर देना चाहिए। लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है ना, जानते हैं प्रभुपाद जी दुआ करते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े सेठ, उसी प्रकार से होते हैं सुअर जैसे, जानते क्या, जैसे सुअर को इंजेक्शन लगाना कठिन काम है, कम से कम 5 डॉक्टर लगते हैं सुअर को इंजेक्शन लगाने के, 4 तो बड़े बड़े उसको पकड़ेंगे सुअर को, है ना, है नहीं, फिर 5वां जो है बड़ी मोटी इंजेक्शन लगाएगा तब जाकर लगाए। तो ऐसे ऐसे लोगों को मंदिर में लाना इतना आसान काम नहीं है, जो हमारे बड़े प्रचारक उनको पता होता है कि एक बड़े को लाना कितना मुश्किल का है, लगा रहता फिर भी जाकर के थोड़ी सफलता मिल जाती है, और जब एक बार आ गया तो बाकी काम कौन कर देते हैं, भगवान कर देते हैं। हमारा एक कर्तव्य है कि सबको इस संस्था जुड़े ताकि उनका भी क्या हो, उद्धार हो, वही आनंद उठाए जो आनंद हम उठा रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट, ठीक है,
हाँ भजनल बाबू दंडवत,
हरे कृष्ण।
हम एक बार भजनल बाबू के साथ द्वारिका गए थे, तो हम रात को पहुंचे 11 बजे वहां, तो वहां स्वामीनारायण मंदिर है।
हाँ यस मालूम देखा।
हाँ तो जैसे हम गए पहुंचे 11:30 बजे, तो उन्होंने सारे गेस्ट हाउस हमारे लिए खोल दिए ना, और प्रसाद की सब व्यवस्था है। तो मतलब जहां भी इस्कॉन के इन्हें कई साधु लोग जाते हैं ना, तो क्योंकि आप एक पीआरओ भी हो और प्रचारक भी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए हमारे मंदिरों में, हमारी संस्था में देखिए सिद्धांत हमारा कितना अच्छा है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मन मनाभाव मत भक्त हो, यद करो से रसनासीयत, जो से दुदासीयत। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं हमारी संस्थाओं में साधुओं को सम्मान नहीं मिलता बाहर के। माने 12 बजे 1 बजे कोई आ जाए, सिक्योरिटी वाला भगा देता है उसको। मतलब कहीं भी सहारा नहीं मिलता, तो आदमी जाता है कि शायद ये मंदिर में भगवान रहते हैं, यहां सहारा मिलेगा। सिद्धांत फिलोसॉफी के हिसाब से बहुत उच्च कोटि की बात है, लेकिन प्रैक्टिकली माने जब कोई जरूरत, पैसे वाला आ गया तो पैसा फेंकेगा, उसको सुविधा मिलेगी। लेकिन कभी गरीब आदमी आता है, नीडी आदमी, एक प्यारो की वजह से भी मैं आपको पूछ रहा हूं।
मैं समझ गया
कि इसकी समस्या का समाधान क्या है।
देखिए मैं समझ गया। देखिए क्योंकि हम भी मैनेजमेंट हैं, वास्तव में हमें स्वीट राइस में सैंड नहीं बनना चाहिए। जैसे इसमें कथा जो चल रही है उसका वातावरण है, अब आपने सैंड डाल दिया उसमें। हम इतने वरिष्ठ होकर के, क्योंकि ये जो प्रश्न या कमेंट से ये मैनेजमेंट के बीच में कर सकते, राइट? हमें ये चीज सोचना चाहिए। अगर हम कितने साल से हैं इसको करने, हम करते, हमको समझना चाहिए कौन बात कहां पे करना चाहिए। ये प्रश्न और कमेंट होता है कि जो कथा की गई है उसके बीच में जो चीज समझ नहीं आता वो होना चाहिए, उससे रिलेटेड। अब समझ, देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग कि दिस इज, ये जो कमेंट और प्रश्न है ये बिल्कुल उलट है, राइट? तो ये चीज हमको सुनना चाहिए, यही हमारी समस्या है। हमको ये नहीं मालूम है कि कौन चीज कहां कब कहना चाहिए। अब इसका कोई मतलब नहीं है यहां पे, लेकिन जब आप मैनेजमेंट जब मीटिंग होती है टेम्पल काउंसिल उसमें ये बात कहेंगे तो वहां कुछ अर्थ निकल सकता है जो आप कहना चाहते हैं, यू अंडरस्टैंड, पहले जाना चाहिए। और दूसरी बात कि बाहर की दुनिया में देखिए हमारा जो रिलेशन है, प्रभु जी से बताया जो ब्रह्म कुमारी है ना, हमें जितने भी सबसे घटिया अगर फिलॉसफी है तो किसकी है? ब्रह्म कुमारी, राइट? अमान हो क्या रहा है इस दुनिया में। जैसे हम जब पूना के प्रेजेंट थे तो वहां पे 2-3 संस्थाएं, रजनीश का भी, भगवान रजनीश, मैं उनसे मिला भी था, है ना, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े डोनर हैं पूना के, उनके बड़े भाई हमारे साथ जुड़े थे और छोटा भाई उनका सेक्रेटरी बना था। तो होता क्या है कि दुनिया कितनी उल्टी है कि एक दूसरे जो संस्था के लोग हैं फिलॉसफिकली वो बिल्कुल जीरो टाइप के हैं, उनका सिद्धांत कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी फिलॉसफी उनका सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार में, प्रैक्टिकल में ऐसा फर्जी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, वो बड़ा अच्छा लगेगा, दिल खोकर रख देंगे, है ना। ये बात सुनिए, पड़ोसी सुनिए, आप सुन के वो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देंगे, है ना, जो कि बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस समाज को क्या दे रहे हैं ये मायने रखता है ना। अच्छी सुविधा मिल जाए, अच्छा ये मिल जाए, उनसे उद्धार नहीं होगा समाज को, समाज को सिद्धांत। हमारे यहां क्या है कि हमारी फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन आचरण में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए इस तरह हमारा मैनेजमेंट बना गया, पर सिस्टम प्रोपोज ना है कि आप कहीं पे हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है, यू अंडरस्टैंड, ये हम सब समझते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन इतना जान लीजिए कि बाहर का जो चीज देखता है, जैसे 2 मिनट ले लूं, एक कथा देखिए कैसे इंसान भ्रमित हो जाता है। हनुमान जी इतने महान भक्त और भी भ्रमित हो गए, कैसे भ्रमित थे? कालनिमि का नाम सुना होगा, जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए बूटी लेने के लिए उड़े तो रावण ने क्या कर दिया था, कालनिम की ड्यूटी लगा दी कि उनको किसी तरह से टाइम वेस्ट करा जाए, उनको रोका जाए, और उसे ऐसा माया रची पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि हनुमान जी जैसे महान भक्त जो दासियों वो भ्रमित हो गए, और इतना सुंदर रमणीक स्थान देख करके और लैंड के ऊपर जा रहे थे और नीचे उतरे और जब वहां देखा तो 50 साधु बेटा आंख मूंद करके बोलता है, बच्चा तुम्हारा नाम हनुमान है, तुम कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, मैं सत्य में सिद्ध महात्मा हूं, सब जान रहा हूं। हनुमान जी भ्रमित हो गए कि अच्छा ऐसा है, ऐसा तो मैंने साधु नहीं देखा जो वर्तमान भविष्य सब जानता हो। तो कहे कि मैं तो शिष्य बेटा बच्चा मैं तुम्हें शिष्य बनाना चाहता हूं, तुम जाओ स्नान करके आओ। स्नान करने गए तो एक मकड़ी ने उनका क्या कर लिया, पैर पकड़ लिया, राइट, आग खोला किसने, हनुमान जी का, भ्रमित हो गए थे मकड़ी ने, कहे कि हनुमान जी आप भ्रम फंस गए, वो साधु महात्मा नहीं है, ज्योतिषी नहीं है, वो तो महान राक्षस कालनेमी है। तब हनुमान जी की आंख खुली, किसने खोला, खोला किसी ने, अब हनुमान जी आ गए, राइट। हनुमान जी ने हाथ जोड़े कि बच्चा आ गया, अब बैठ जाओ मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं आपका ऐसा शिष्य नहीं हूं, मैं पहले भिक्षा देता हूं तब दीक्षा लेता हूं। काले बड़ा खुश हो गया, ऐसा शिष्य तुम्हें पहली बार मिला है ना, जो भिक्षा पहले दे रहा है, ऐसा तो कभी देखा है, जो पहले भिक्षा दे फिर दीक्षा ले, है ना। तो कहे ठीक है बच्चा, अगर तुम्हारी भिक्षा देने की इच्छा है तो भिक्षा दे दो। हनुमान जी ने क्या किया, कहे कि गुरु जी आंख मूंद लीजिए, है ना, क्योंकि हमको भिक्षा देनी है, वो आंख मूंद लिया, राइट। और जब आंख मूंद गया, हनुमान जी ने क्या किया, उसको पकड़ा, अपना पूछ लंबा करके लपेट लिया उसको बड़ी तेजी से, कहे क्या कर रहे हो, क्योंकि भिक्षा दे रहा हूं, लपेट करके सटक सटक 3 सटका में उसको प्राण ले लिया। जैसे ही वो मर गया सारा अदृश्य सब खत्म हो गया। हमें इन माहौल के हमें फंसना नहीं चाहिए कि हाँ बड़ा रमणीक है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। ये बाद में जब पुलिस पकड़ती है ऐसे से लोग क्या करते हैं, जेल में जाते हैं, है ना। हमने कई ऐसे आश्रम देखे हैं, आज उनके आश्रम के मालिक हैं जेल में जा रहे हैं, है ना। तो दुनिया बड़ी विचित्र है प्रभु, आप विश्वास नहीं करेंगे। हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई, इसीलिए जलाई, जब पहली बार लंका देखा क्या लंका है सोने की। लेकिन जब रात में अंधेरे में जब सीता जी खोजने के अंदर जाने के, तो बड़ा कुकर्म हो रहा था। वाल्मीकि में तो इतना बढ़िया लिखा है कि सारे गंदे काम हो रहे थे, जुआ शराब बेशक समुद्र चल रहा था। हनुमान जी ने कहा कि जो लंका दूर से देखने में इतना अच्छा लगता है, सोने की बनी हुई है, उसके अंदर इतना घटिया काम हो रहा है, आग लगा देना चाहिए, आग लगा ही दिया उन्होंने। कि बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल, बड़ी बड़ी कोठियां, बिल्डिंगें जो देखने बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये जब जानेंगे तो आग लगाने की इच्छा हो जाएगी। बड़ा विचित्र चीज है। तो हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए, जो चीज हमको दिखाई देती है कभी कभी वो होती नहीं है। तो जब हनुमान जी से नारद जी जो उपदेश दे रहे हैं, यही नारद जी खुद भ्रमित हो गए थे, विश्वमोहिनी के चक्कर में खुद फंस गए थे। इतनी खूबसूरत थी विश्वमोहिनी कि नारद जी ने उनका हाथ देखा और कहा कि मैं ही शादी करूंगा, है ना, सोचने वाली बात। तो भैया जब ऐसे ऐसे महान भक्त भ्रमित हो सकते हैं तो हम लोग किस खेत की मुनि है, तो हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज संभाग की जय।